नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत आनंदित होंगे, कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की याद में होंगे। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ मिलने के लिए गया। एक सुंदर कथा से शुरुआत कर रहा हूँ। जब मिलने के लिए गया, वो डाइनिंग रूम में बैठ गया वहां पे, और उसने सोचा कि मैं कुछ गिफ्ट तो लाया नहीं हूँ अपने मित्र के लिए, क्या दूं इसे। अब वहां उनकी दीवार पे ही एक पेंटिंग टंगी हुई थी, उसे ही उतार लिया उसने, सोचा यही गिफ्ट दे दूंगा। अब जब मित्र आया तो वो पेंटिंग जो उसने दीवार से निकाली थी, वही गिफ्ट अपने मित्र को दे दी। मित्र ने देखा, ये तो मेरी ही पेंटिंग है। खुश नहीं हुआ वो। क्या आपको लगता है कि वो खुश हुआ होगा अपनी पेंटिंग देख करके? नहीं मित्रों, यही चीज तो हम लोग भी करते हैं ना। परमात्मा ने ही सृष्टि पे फूल फल सब चीजें बनाई हैं, और जब हम परमात्मा से मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, तो हम भी उन्हीं की इस प्रकृति से फूल और फल तोड़ के उनपे अर्पित कर देते हैं। क्या इससे परमात्मा प्रसन्न होंगे? शायद नहीं। उन्हीं आवश्यकता किसी और चीज की है। यदि हम अपने अंदर की विकृतियां, अपने अंदर की बुराइयां उन्हें देंगे और अच्छा बनने का संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, तो शायद वो हमसे कहीं ज्यादा प्रसन्न होंगे। यदि हमारे दिल का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे हमसे। इसीलिए जब कभी भी हम ध्यान में बैठते हैं या ऐसे स्थानों पे जाते हैं जो पवित्र स्थल हैं, संकल्प जरूर लिया करें अपने अंदर की विकृतियों को चढ़ाने का और साथ ही अच्छे गुणों को धारण करने का, जिससे ईश्वर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उनका आशीष भी हमें प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
भ्राता जी, परमात्मा को प्रसन्न करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लगातार हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है, और केवल फूल फल चढ़ाने से तो शायद ये बात नहीं बनती, बुराइयों को चढ़ाया जाए शायद ज्यादा प्रसन्न होंगे।
बिल्कुल, इसीलिए भारत में एक छोटी सी प्रथा चली आ रही है
जी,
कि लोग जब ऐसे कहीं जाते हैं, हरिद्वार गए, गंगा नहाने, और कहीं कुंभ में गए, किसी बड़े मंदिर में गए, तो क्या करेंगे, आज से मैं भिंडी खाना छोड़ देता हूँ।
अच्छा।
आज से मैं ग्वार फली खाना छोड़ देता
हूँ। मतलब सहज प्रतिज्ञा करते
हैं। सहज वो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान अपने बच्चों को प्रसन्न देखना चाहता है, वो अपनी संतानों को सुखी देखना चाहता है, इसलिए वो उन बुराइयों का त्याग चाहता है जिनके कारण उनका जीवन अशांत और दुखी हुआ है। तो वही भगवान को प्रिय है, उसे तो एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फूल चढ़ाए या न चढ़ाए, इससे उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। हमने तो खुद देखा, तो कई लोग उनके पैर छूना चाहते थे, नहीं तुम मेरे बच्चे हो, सुखी हो जाओ, बस यही सब कुछ है,
और बुराइयों को छोड़ दो।
बुराइयों को छोड़ दो।
जी 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 दादा जी, चलिए मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। आज एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव आया है हमारे पास कोलकाता से, मोनाली मिश्रा जी का, और ये कहती हैं, ओम शांति। I am writing this mail is to thank you for all your guidance and blessings you have bestowed on me in my difficult period. After seeing your Samadhan program, when I first decided to call you, at that moment I was not having any job in my hands. In whichever field I tried, I faced only the failure. By following your guidance, I started practicing meditation in the way in which you told me. Now the situation is that I am having 4-5 offers from different places, but I have decided to join the bank offer which I got through IBPS. Now I am going to start a new journey in my life, but the path of meditation which you have showed me will always be followed by me. Thanking you with regards, Monali Mishra, Kolkata se.
Na, Monali Mishra ko to hum congratulation kahenge.
Ji.
Bahut acha hai. Inki safalta par inko barambar badhai. Aur मैं ऐसा ही कहता हूं कि इन्हें शिव बाबा को भोग लगवा देना चाहिए
जी,
क्योंकि सफलता का फाइनल श्रेय उनको ही जाता है। मुझे भी एक बात याद आ गई, आज ही सवेरे जयपुर से एक व्यक्ति का फोन आया, नाम है श्याम सुंदर, और कहा मेरी बहुत बड़ी समस्या थी बैक पेन
जी।
और इतना बैक पेन था कि मैं रात को सो नहीं पाता था, तो ये कुछ विधियां अपनाई, शायद फोन किया उसने मुझे और दो चीजें हमने उसे बताई, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उसने इसकी प्रैक्टिस शुरू की और पहले ही दिन वो 4 घंटे सोया रात को, और आज उसने बताया मुश्किल से 1-1.5 मास हुआ होगा कि उसका बैक पेन फाइनली चला गया है। तो बहुत ही अच्छी चीज है स्पिरिचुअल पावर, सचमुच सभी समस्याओं का, रोगों का निदान करने में सक्षम है, तो हम मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन भी यदि करेंगे तो बहुत फायदा होगा।
ये पहला मेल हमारे पास नागपुर से आया है। प्रवीण आपटे जी लिखते हैं, कहते हैं, मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ, विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मनोस्थिति अब तक बहुत सुंदर रही, परंतु अचानक ही मन में बहुत व्यर्थ संकल्प आने लगे हैं। मन में यदि कोई एक भी संकल्प आ जाता है तो मैं उसे रोक नहीं पाता, इसके लिए क्या सहज विधि अपनाऊं?
ये समस्या बहुतों के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि मन बहुत कमजोर हो गया है तो अपने संकल्पों पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। करने चाहिए उसे न्यू थॉट्स क्रिएट, और वो अधीन हो जाता है किसी एक संकल्प के जो बारंबार उसमें प्रवेश कर रहा है। तो मन की जो ये नेचर है क्रिएटिंग थॉट, तो हमें थॉट्स क्रिएट करने चाहिए अच्छे अच्छे। इसलिए मैं इनको पहला सजेशन दूंगा कि सवेरे उठ के ही सुंदर विचार क्रिएट किया करें अपने मन में, क्योंकि ये मन की जो ये वीकनेस हो गई, इसको जल्दी रोक लेना परम आवश्यक होगा, अन्यथा मन इसको बहुत दुखी कर देगा। वो जो चाहे सोचा करेगा और ये उससे परेशान हुआ करेंगे। तो सवेरे थोड़ा जल्दी उठेंगे, पहले भगवान से बातें करें, वो हमारा परम पिता है, उसको गुड मॉर्निंग करके उसे बातें करें, तूने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये नहीं कि क्या ये संसार गंदा संदा दुख भरा, ये नहीं, तुमने कितना सुंदर संसार बनाया है और हमें मनुष्यों को कितना श्रेष्ठ बनाया, हमें श्रेष्ठ बुद्धि दी है, सुंदर मन दिया है, मेरा मन बहुत सुंदर है, चारों ओर प्रकृति का कितना सौंदर्य तुमने बनाया है, वाह तुम्हें बारंबार धन्यवाद। अपने मन को प्रसन्नता से भरें और फिर कुछ ऐसे विचार करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो मूल रूप से पवित्र हूँ, इस माया पर तो मेरी विजय निश्चित है, मैं बहुत सुखी हूँ। कई कई बार कर ले संकल्प तो सवेरे ही मन चार्ज हो जाएगा
जी,
और सवेरे जब मन चार्ज हो जाता है तो चार्ज हुआ मन बहुत एनर्जेटिक रहेगा और इसकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। एक विधि
जी।
उसके बाद शांति में बैठकर 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
सुबह ही।
इससे क्या होता है, कई लोग सोचते हैं हम बारंबार ये बात क्यों बता रहे हैं, धीरे धीरे हमारा अंतर्मन इसे स्वीकार कर लेगा कि यू आर मोस्ट पावरफुल, और अंतर्मन जब स्वीकार कर लेगा तो हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, हमारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा और तब ये व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सवेरे इनको लिख लेना चाहिए और दिन में भी जितनी बार भी हो सके ये लक्ष्य बना, कुछ दिन के लिए ही 21 दिन का ये अपना प्लान बनाएं कि हर घंटे में मुझे 10-12 बार याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि का मालिक हूँ। 10 बार करें हर घंटे, केवल 21 दिन तक, ये बहुत पावरफुल बन जाएंगे और 21 दिन के दौरान ही ये व्यर्थ संकल्पों की इस महाबीमारी से मुक्त हो।
तो जिनको भी व्यर्थ की समस्या है व्रता जी, क्या यही प्रैक्टिस करें जो आपने बताया?
ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी जो मैंने कही, सवेरे से चालू करें, स्वराज अधिकारी का भी सवेरे ही अभ्यास कर लिया करें। सवेरे माना पहले 10-15 मिनट में, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, मन बुद्धि का मालिक हूँ। अब एक संकल्प दे दें, मैं मन का कंट्रोलर हूँ, मैं मन से बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, और फिर ये अभ्यास करें सारा दिन जो मैंने बताए, तो बहुत जल्दी 21 दिन तो दृढ़ता से कर लें, और अगर किसी को जरूरत पड़े तो और ज्यादा भी कर लें, 21 दिन और कर लें, 3 मास तक कर लें, क्योंकि हरेक ने क्या क्या भरा है अपने अंदर और उसका स्टोर कितना है निगेटिविटी का, इस पे डिपेंड करेगा ना। अभी किसी के अंदर माल ही बहुत भरा हुआ हो तो संकल्पों के रूप में बैठा रहेगा, वो जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा 3 मास की ये प्रैक्टिस कर ले। और ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, क्योंकि व्यर्थ से अगर मनुष्य मुक्त हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है
जी।
उसके अपने चित्त में बहुत शांति रहती है, काम करने को उसका मन करेगा, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ने में उसका मन लगेगा। तो टोटल ये एक ऐसी साधना है छोटी सी जो जीवन को उज्जवल बना देती है।
बिल्कुल प्रताप जी, आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारे पास भी आते हैं बढ़ती चली जा रही है, वो ओसीडी की प्रॉब्लम है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, इसमें भी व्यक्ति एक विचार उसको आ जाता है, फिर लगातार वही सोचता रहता है, वही सोचता रहता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
ये प्रैक्टिस करें, दूसरा ब्रेन को एनर्जी दें, तीसरा चार्ज करके पानी पिएं। ब्रेन को एनर्जी देने की विधि मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि इस अभ्यास की आजकल बहुत जरूरत है और सभी को सीख लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा अच्छे लोगों को भी 5 मिनट रोज अपने ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए, ताकि उनका ब्रेन एफिशिएंट रहे, बहुत पावरफुल रहे, कैपेबल रहे और भविष्य में कोई ब्रेन से संबंधित साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना आए। तो विधि यही है, दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करें, मैं मास्टर सर और शक्तिवान हूँ। 3 बार क्यों? ताकि हाथों में एनर्जी आ जाए पूरी और ये शक्तियों के वाइब्रेशन हाथों में आ गए, इसको दाएं बाएं सिर पे रख दें, आंखें बंद कर लें और फील करें ये एनर्जी ब्रेन को जाकर मेरे ब्रेन को नॉर्मल कर रही है, परफेक्ट कर रही है। ये है ब्रेन को एनर्जी देना। जिनको ब्रेन की तकलीफें हैं या इस तरह के व्यर्थ संकल्प या ये जो बीमारी आपने कही है, वो 10 मिनट दें, एक ही बार में 10 बार, और नॉर्मल व्यक्ति 5 मिनट दे तो काफी अच्छा रहे।
प्रति जी, कई बार जैसे आपने लिखने की बात कही है या इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करने की बात है, तो ये थॉट्स क्रिएट करना कई बार थोड़ा सा मन को अरुचिकर लगता है कि ये क्या है और क्यों करें। अच्छा, कुछ दिन करने के बाद भी यदि कुछ नहीं हो रहा होता है इफेक्ट, तो भी उसमें फिर रुचि धीरे धीरे कम होती चली जाती है और जो पिछला प्रभाव है वही ज्यादा हावी होता रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए?
मानसिक स्थिति वालों की यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो उन्हें रुचि नहीं होगी लिखने की भी।
जी जी,
बहुत लोग लिख नहीं पाते हैं। मैं माताओं को कहता हूँ बच्चों को लिखाओ, तो थोड़ा सा लिखते हैं आ करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, मैं नहीं लिखूंगा, गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें माताओं को पहले अपने बच्चों को ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए, और कोई बड़ा है तो उसे स्वयं ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए। सोया है तब दे देनी चाहिए। हाथ ऐसे रख सकते हैं थोड़े पास में, टच न भी करें, भाई नींद खुले तो पास में रख दें। ब्रेन को एनर्जी देने से मन की रुचि बढ़ जाएगी और थोड़े से शुरू कर ले, भले 11 बार लिखें, 10-10 बढ़ाएं, फिर 21 बार, फिर 31 बार, तो जैसे जैसे बढ़ेगा रुचि बढ़ती जाएगी, ब्रेन से वो निगेटिव एनर्जी नष्ट होने लगेगी।
बिल्कुल, मतलब इसको हमें करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई
नहीं। देखिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि बीमारियां भी अनइफेक्टिव होती जा
जी जी, और दवाइयां भी बढ़ता है जी, आजकल इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ये भी एक समस्या बन रही है।
इसलिए ये थेरेपी अपनाने से दवाइयों का भी असर अच्छा होगा, ब्रेन को एनर्जी देने से बहुत सारी चीजें ठीक हो गई।
पता जी, एक चीज और इनके प्रश्न में था जो मैं पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पहले जब मैं विद्यालय से जुड़ा, मेरी मनोस्थिति बहुत ही अच्छी थी और अब जा करके ये बिगड़ गई है। तो आपको क्या लगता है क्या कारण हुआ होगा? एक अच्छी स्थिति थी लेकिन अब एक डाउन वाली स्थिति हो गई।
ये बहुतों के साथ ही संसार में अब होने लगा है और 2-4 साल में ये सबके साथ होने लगेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, कलयुग अपनी समाप्ति की ओर है। ये सुंदर रहस्य है जिसको कोई मनुष्य नहीं जानता और जिसको तर्कों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, और वो यही है कि जन्म जन्म के पाप और विकार जो हमारे मन में बसे हुए हैं, ब्रेन में भी जिनके प्रिंट्स हैं, वो उनके अब एक्टिव होने का समय आ गया है। अब ये बात न तो किसी मनुष्य को पता है, ये तो ऊपर से आई है, और न इसको तर्कों के द्वारा कोई सिद्ध कर सकता है, न ये कहीं लिखी गई, लेकिन ये काम अब होना प्रारंभ हो गया है। ये हमने ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जाना है, इसलिए जो कुछ नहीं हो रहा है वो अब होगा। संबंधों में कड़वाहट आएगी, बीमारियां उग्र रूप लेंगी, यही इनके साथ हुआ है। कि जब वो 1 साल पहले थे तो काफी अच्छे थे, लेकिन 1 साल में सब कुछ इमर्ज होने लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजयोग करने से भी कुछ इमर्ज होता है, उसे घबराना नहीं है। जैसे कोई दवाई खाने से कोई बीमारी तेज हो जाया करती है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो तेज हो रही है, बल्कि वो समाप्ति की ओर है। तो इसी तरह अगर कोई संस्कार, कोई बुरे विचार आ रहे हैं ज्यादा, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, वो नष्ट होने के लिए आ रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, अब उसकी पवित्रता पहले थोड़ी अच्छी भी थी, उसको व्यर्थ संकल्प नहीं चलते थे, लेकिन बहुत लोग ऐसा सुनाते हैं, जब से दृढ़ प्रतिज्ञा की हमारी दृष्टि इधर उधर जाने लगी। इसे घबराना नहीं है, क्योंकि वो इम्प्योरिटी बाहर निकलने लगी। हम अपनी साधना चालू रखें और वो सब कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाए।
भाई इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि हम पहले ही अच्छे थे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई उपवास रखने का हमने संकल्प लिया और जिस दिन रखा उसी दिन इतनी ज्यादा भूख लगी उपवास ही तोड़ना पड़ा। तो हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना चाहिए विशेष।
ये ऐसा ही होता है जैसे किसी घर के पास कूड़े का बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो गया हो, उस पे घास भी जम गई हो, कोई बदबू आदि न हो, लेकिन अब वहाँ सफाई करनी है तो जब सफाई होगी तो वो खोदा जाएगा, बदबू होगी, एक बार तो बदबू होगी लेकिन अंततः।
बहुत गहरी बात कही है कि अब जो भी प्रिंट है हमारे अंदर, जो बुराइयां प्रिंट हैं या हमारे पास्ट के जो कर्म हैं, वो सब अब इमर्ज हो रहे हैं, उसके कारण ये सारी जो विकट स्थितियां बन रही हैं। तो ये तो एक दुखद समाचार है कि सभी लोग कितने दुख के दौर से गुजरेंगे, कैसे इस दौर को ठीक ठाक पार किया जाए और ये जो नेगेटिव प्रिंट्स हैं हमारे अंदर उसे भी हम समाप्त कर पाएं।
देखिए मैं ये जब बात कहता हूँ तो कई लोग सोचते हैं कि ये खराब बात क्यों बताई जा रही है, लेकिन इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अनहोनी चीज घटेंगी, जो बिल्कुल कल्पनाओं में भी नहीं था वो सब होने लगेगा, अपने पराये होने लगेंगे। इस चीज को स्वीकार करने के ऐसा टाइम आ रहा है। जैसे दिन छिपता है, रात शुरू होती है, तो सबको ख्याल है कि रात होने वाली आधे घंटे में, तो इससे कोई परेशान तो नहीं होता ना। दीपक जलाएंगे, जिनके पास घर में लाइट है वो अपने बल्ब ट्यूब सब कुछ जलाएंगे, तैयारी की जाती है। तो हम भी इसके लिए तैयारी करें, और उस तैयारी में मैं दो तो क्वालिटी सबको बताता हूँ
जी।
सरलता, बहुत हल्के रहें कि जो कुछ होगा ये होगा, वही होगा जो होना है। दूसरा, अपने मन को प्रसन्न रखने की आदत डालें। जहाँ खुशी बहुत होती है वहाँ मनुष्य सहज ही हर चीज को पार कर लेता है। और तीसरी चीज, अब जो प्रैक्टिस है, स्वमान की प्रैक्टिस बढ़ाएं। स्वमान से हमारी अच्छाइयाँ, हमारी शक्तियाँ जागृत होंगी, जो कुछ होगा उसे फेस करने की हमें शक्ति होगी। और चौथी चीज, फिर राजयोग मेडिटेशन करें, ताकि परमात्मा से हम जुड़े रहें, उसकी मदद हमें मिलती रहे, और पहाड़ जैसे तूफान भी, दुख भी हमारे सामने आ जाएं तो सहज पार हो जाएं। एक चार चीजें सबको करनी चाहिए।
बिल्कुल, मतलब हम ऐसे समय के लिए, जैसे एग्जाम होता है तो उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं, वो तैयारी हमारी हो। ब्रदर जी आपने कहा मुस्कुराएं हम या हर्षित रहें, ये मान लीजिए बहुत ज्यादा अनहोनी घटना हो जाती है तो ये मुस्कुराना या प्रसन्न रहना ये भारी नहीं हो जाता?
भारी बिल्कुल भूल जाता है। अच्छे अच्छे लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं, धनवान लोग मुस्कुरा नहीं पाते, क्योंकि घटनाएं ऐसी चीज है। इसके बाद धन बहुत है लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग। मान लो उसके बच्चे की मृत्यु हो गई तो धन क्या करेगा?
अब जो अनहोनी की आप बात कर रहे हैं, शायद ऐसी कुछ घटनाएं यदि हो जाए,
बहुत होती है। एक्सीडेंट हो गया चलते चलते, कार तो फर्स्ट क्लास थी लेकिन ड्राइवर को नींद आ गई, बैलून भी खुल गया लेकिन जा गिरी कार गहरे गड्ढे में, बैलून भी क्या करेगा, चोट लग गई बहुत ज्यादा, किसी की मृत्यु भी हो गई। तो ऐसी घटनाएं होंगी, प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत होने जा रहे हैं सृष्टि पर, क्योंकि प्रकृति का भी प्योरिफिकेशन होगा। अब गांव के गांव नीचे चले गए, पहाड़ के नीचे दब गए, जैसा अभी पूना के पास हुआ, और महामारी फैल गई, बहुत ज्यादा बारिशें होने लगी, अकाल पड़ गए कहीं, तो ये सब होगा। इसमें केवल स्पिरिचुअलिटी काम आएगी, वही जिसके पास बहुत ज्ञान का बल होगा लंबे काल का, इन सब दृश्यों में साक्षी रह सकेंगे। और मन को बाहर से तो प्रसन्न रखना कठिन होगा लेकिन मन को शांत रख सकेंगे।
मतलब स्पिरिचुअलिटी ही एक मार्ग है जो इस प्रकार का एग्जाम हमारे सामने आने वाला है उसकी तैयारी के लिए। एक विशेष बात रहता जी मैं जानना चाहूंगा, लगातार लंबे समय तक हम लोगों ने चर्चा की है कि यदि हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। एक महावाक्य भी यहाँ लिखा हुआ था जिसकी चर्चा भी मैंने की थी कि यदि परमात्मा कहते हैं कि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये अनहोनी होने वाली है या बुरी घटनाएं आने वाली है, यदि अभी से मैं अच्छा अच्छा सोचता हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, तो क्या ये घटनाएं बिखर नहीं सकती, ठीक नहीं हो सकती?
देखिए हमारे मोदी साहब ने भी कहा है अच्छे दिन आएंगे।
हाँ जी।
और लोग उनके मजाक भी उड़ाते हैं, क्या आएंगे अच्छे दिन, टमाटर तो मिलते नहीं है, प्याज तो मिलता
लेकिन एक विश्वास जागा है।
लेकिन सभी लोग सोचने लगे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, तो जो बुरे दिन आ रहे हैं वो उनको पास करना सरल हो जाता है ना। तो सचमुच मैं तो ये कहूंगा जो भगवान ने हमें सुनाया है, स्वर्णिम दिन आ रहे हैं, गोल्डन डेज आर अबाउट टू कम, और वो आएंगे महाविनाश के बाद, क्योंकि पापियों के समय में अच्छे दिन नहीं आ सकते, माया के रावण के समय में अच्छे दिन नहीं आ सकते, जहाँ हर मनुष्य पाप कर रहा हो वहाँ अच्छे दिन नहीं आ सकते। तो पहले इस पाप को समाप्त करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा सा समय, वो कोई बहुत युगों तक नहीं चलेगा, थोड़ा सा समय, ऐसा समय ले 10 साल, वो बुरी घटनाओं से मनुष्य को गुजरना पड़ेगा और फिर हो जाएगा प्योरिफिकेशन और फिर गोल्डन डेज आ जाएंगे।
बिल्कुल, मतलब यहाँ की साफ सफाई की आवश्यकता है। तो बता दीजिए, ये संभव नहीं है कि जैसे हमेशा ये बात कही जाती है कि पाप से पाप को नष्ट करो, पापियों को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये जो आज पाप कर रहे हैं ये भी शुद्ध हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ऐसी संभावना नहीं है ताकि ये भी उस गोल्डन एज में आए और वहाँ का भी आनंद लें?
पहला तो लक्ष्य यही है कि सभी अच्छे बन जाएं, सभी मनोविकारों से मुक्त हो जाएं, और इसी के लिए कार्य हो रहा है। हम लोग, हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये महान यज्ञ भी यही कार्य कर रहा है कि सभी मनोविकारों से मुक्त हों, पापों से मुक्त हों, दुखों से मुक्त हों। लेकिन अंततः जब नहीं होते, जो हो जाएंगे वो तो सुखी, लेकिन जब नहीं होते फिर उनके लिए ये सब इंतजाम है।
अच्छा अच्छा, मतलब ये उनके लिए इंतजाम है
जो भगवान के कहने से भी सुधरेंगे नहीं तो उनको समय सुधारेगा।
तो ये बात उनके लिए यही कही गई है क्या? वो कहते हैं कि जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये भगवान भी उंगली टेढ़ी
करना ही पड़ेगा उसे, इसलिए महाविनाश है। देखिए, वो न हुआ होता तो उसकी चर्चा भी न होती, परले के रूप में, महाविनाश के रूप में पहले से ही चर्चा। फिर एटम बॉम्ब्स बन गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बन गए, अब वो म्यूजियम में सजाए तो जाएंगे नहीं, उनका प्रयोग होगा। इतने देशों ने जो उनपे अथाह धन संपदा लगाई है उसका प्रयोग होगा, और प्रयोग अच्छाई के लिए ही होगा, भले बुराई दिखाई देती है, पाप और पापी नष्ट हो जाएंगे, ये सारा पोल्यूशन समाप्त हो जाएगा, प्रकृति भी शुद्ध हो जाएगी और विज्ञान भी एक रिफाइन रूप में पहुंच जाएगा। इस सब से ग्रहों की लोकेशन सिचुएशंस बदल जाएगी, उनके जो बुरे इफेक्ट हैं वो सब बदल जाएंगे, तो ये सब अच्छाई के लिए होगा। तो ये जो बुरे दिन दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे स्वर्णिम दिन छुपे हुए हैं, बस वो प्रकट हो जाएंगे।
बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं बेटा जी ऐसा एक सहज, सब कुछ शांति से और ऐसी सहजता से हो, और जो लोग अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं वो भी बदलें और शुद्ध स्वच्छ हो जाएं, ताकि एक अच्छी सुंदर नई दुनिया आए। एक दूसरा प्रश्न हमारे पास व्रता जी आया हुआ है, ये कहते हैं कि मेरे बड़े लौकिक भाई ने लगभग 8 सालों से मेरे पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है। वह आईटी सेक्टर में काम करता था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन बुरी लत, शराब, सिगरेट आदि के चलते नौकरी भी नहीं रही और पैसा भी नहीं रहा, सब बर्बाद कर दिया। अब घर में भी लोगों से पैसा मांगता है पीने के लिए, नहीं देने पे अपमान करता है, पैसे चुराता है। सारा ट्रीटमेंट हमने करा लिया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं और मेरी मम्मी इस विद्यालय से 1 साल से जुड़े हुए हैं, अब बाबा के सिवाय मेरा और कोई दूसरा सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, कृपया कुछ उपाय बताएं।
देखिए, दो विधि अपनाएंगे
जी,
ऐसे केसेज कई घरों में हो रहे हैं। युवा किस तरह बुरे संघ में आके गलत मार्ग पे चले जाते हैं
जी,
जैसा इसके साथ हो रहा है, वो भी अपने जीवन से दुखी होते हैं, पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है। तो एक तो इनकी माता जी को चाहिए कि पवित्र भोजन इनके लिए बनाए, और नहीं तो पानी तो घर में पिएगा ही, पवित्र पानी चार्ज करके पिलाएं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए भोजन बनाएं, और संकल्प करें कि इस पवित्र भोजन को खाने से इनका ये व्यसन छूट जाए। दूसरी चीज, 1 घंटा रोज इनके लिए योगदान करेंगे, माता और ये लड़की दोनों करें, बहुत अच्छा होगा। योग बहुत बड़ा बल है दूसरों को भी बदलने में, उसमें संस्कार जो उसके देव संस्कार हैं वो जागृत हो जाएंगे। और तीसरी भी एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि रोज सवेरे जब वो सोया हो 5 बजे, उसको 10 मिनट गुड वाइब्रेशंस दें, योग युक्त होकर मुझ आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं, और उसको ये संकल्प दें, तुम देव कुल की श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम तो बहुत महान हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, ये शराब छोड़ दो, ये रोज संकल्प दें, 21 दिन तक ये प्रयोग भी करें तो निश्चित रूप से उसकी सोई हुई चेतना जग जाएगी और वो एक अच्छा इंसान बन जाए।
तो ये सभी लोग रहते हैं जी, जो भी ये शराब सिगरेट के आदि हैं उनके परिवार वाले कर सकते
ये तीन विधि अपना।
बिल्कुल, क्योंकि जो शराब पीते हैं वो तो शायद इस चीज को स्वीकार ना करें, लेकिन परिवार वाले ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं कि कब ये ठीक हो, क्योंकि उनका बहुत बुरा प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है। ये तीनों अभ्यास वो तीनों ही कर सकते हैं जी। पता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुंदर आज की चर्चा के लिए, प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, शुरुआत मैंने की थी कि परमात्मा को क्या अर्पण करें जिससे वो खुश हो। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि परमात्मा ही कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। बहुत ही गहरी पंक्तियां हैं और शायद इस पे बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि परमात्मा जो चाहते हैं यदि हम वो करें, बुराइयां उन पे अर्पण करें और अच्छे इंसान बनने की ओर चलें, तो कहा जाता है कि जब हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो परमात्मा की भी हमें मदद प्राप्त होती है और इससे प्रसन्न भी होते हैं, उनका आशीष भी मिलता है, न केवल उनका लेकिन हमारे आसपास के लोगों का भी। तो हम अच्छाई के पथ पर अग्रसर हों, बुराइयों से मुक्त होते चलें और साथ ही सबको मदद भी करते चलें। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।